भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का पारिवारिक घमासान अब चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है। इस वर्चस्व के संघर्ष में पिता, पुत्र, चाचा, दोस्त, भाई, सभी रिश्ते एक एक कर बेनकाब होते गए। हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हैं बीबीसी के वरिष्ठ संवाददाता नितिन श्रीवास्तव जी। नितिन सर, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
नितिन जी, बैकग्राउंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्या हुआ, कब हुआ। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ताजा हाल क्या है, कहाँ खड़े हैं दोनों गुट, एक पिताजी का और एक बेटे का।
ताजा जो सूरत है जितार्थ, वो ये है कि इस वक्त पिता और बेटे दोनों एक चीज को अपनी तरफ खींचने में लगे हैं, और वो एक साइकिल है। साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, और साइकिल वो चुनाव चिन्ह है जो मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी को दिया था जब उन्होंने स्थापना की थी उसके बाद से, और 2012 में उसी साइकिल के चलते और उसी साइकिल की रैलियों के चलते अखिलेश यादव को बहुत बड़े बहुमत से यूपी ने चुनाव जीत दिलाई थी, समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई थी, और वो मुख्यमंत्री भी बने थे। आज उसी साइकिल के चुनाव चिन्ह को लेकर बाप बेटे ने खींचतान है। मुलायम सिंह यादव इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव आयोग वहां पर पहुंच चुके हैं, अपने चुनाव चिन्ह पर दावा कर चुके हैं, और अखिलेश यादव की तरफ से उनके चाचा और मुलायम सिंह के चचेरे भाई राम गोपाल यादव जो इस पूरे प्रोसेस में, पूरी प्रक्रिया में अखिलेश की तरफ है, वो आज जा रहे हैं चुनाव आयोग में मुलाकात करने। तो अभी लड़ाई साइकिल की है, और जाहिर है साइकिल की लड़ाई है तो लड़ाई ये है कि एक डेढ़ से दो महीने बाद यूपी में होने वाले चुनाव है, उसमें कौन साइकिल के साथ लड़ेगा, कौन बिना साइकिल के लड़ेगा।
बड़ा अजीब लगता है नितिन, डेमोक्रेसी के यानी लोकतंत्र के इस जमाने में करीब 200-400 साल पहले जिस तरह से सत्ता को हथियाने के लिए पूरा परिवार बट जाता था, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, प्लॉट षड्यंत्र किए जाते थे, कुछ वैसा ही देखने का मिल रहा है इस बार भी समाजवादी पार्टी में।
जी बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी में ही नहीं, ये तमाम लोगों की राय है, और ये हम लोग देखते आ रहे हैं कि ज्यादातर जो राजनीतिक दल हैं इंडिया में, जो खास तौर से जो रीजनल पार्टीज हैं, उन पार्टीज में क्या है कि उन पार्टीज की स्थापना ज्यादातर किसी एक व्यक्ति विशेष के कैरिश्मा के चलते या उसकी एक मूवमेंट के चलते हुई थी, और आगे चल के उस दल में उस व्यक्ति के बाद की विरासत को लेकर खासा जो है वो खींचतान मची रहती है। मिसाल के तौर पर ये तो नॉर्थ इंडिया की बात है, अगर आप साउथ में देखें तो जो डीएमके पार्टी है वो जो द्रविड़ों की बात करती है, उसके जो नेता कुमार जो करुणानिधि है, उनके परिवार में भी ये इस तरह का मंजर एक आया था। हालांकि अब उनके परिवार ने स्टालिन को एक स्थान दे दिया गया है, एक उत्तराधिकारी सा बना बता दिया गया है उन्होंने, लेकिन उनके बड़े भाई अब मदुरई चले गए हैं, और कनीमोड़ी में काफी मतलब इस तरह का होता रहा है, वही समाजवादी पार्टी में देखने को मिला है। यहाँ पर जो 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 एक डिफरेंट चीज है वो ये है कि मुलायम सिंह के साथ में उनके जो दो भाई थे, एक सगे शिवपाल यादव और एक चचेरे राम गोपाल यादव, उन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को स्थापित करने में मुलायम सिंह की मदद की है। जाहिर है मुलायम सिंह यादव उसके चेहरे थे। अब क्या है कि उन लोगों ने शायद ये माना होगा, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के मन में, हालांकि उन्होंने कभी खुल के इस बात को जाहिर नहीं किया है, कि आखिरकार मुलायम सिंह के बाद तो उनका हक बनता है पार्टी पर। उसी बीच अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके वापस लौटते हैं, चाहते थे ऑटोमोबाइल का बिजनेस करना, रामगोपाल यादव ने उनको कन्विंस किया कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, और 5 से 8 साल 10 साल की पॉलिटिक्स में वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और अब मुलायम के एक तरह से उत्तराधिकारी भी हो चुके हैं। तो यही लड़ाई का सबब है, और बिल्कुल आपने सही कहा, 400-500 हजार साल पहले जैसे होता था कि मुगल सल्तनत में जिस प्रिंस को मुगल बादशाह पसंद नहीं करते थे उनको दूर दराज के किलों और सूबों में भेज दिया करते थे रेबेलियन क्वेल करने के लिए, वैसे यहाँ पर होता है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता का क्या हाल है, वो कैसे देख रही है इसे?
उत्तर प्रदेश की जनता जिसार जो है अभी थोड़ा कंफ्यूज है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो काफी कंफ्यूज है, उसको ये लग रहा है कि चुनाव आ रहा है और ये समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की पिछली 4 से 5 साल की सरकार में उतार भी देखे, चढ़ाव भी देखे। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, बीच में बहुत ज्यादा बैड पब्लिसिटी हुई तमाम चीजों पर सवाल उठे, दंगे हुए प्रदेश में और तमाम चीजें हुई। उसके फिर बाद में एक से डेढ़ साल में अखिलेश यादव ने अपने को एक यूथ आइकन बनाकर, यूथ लीडर बनाकर पार्टी के साथ साथ अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, जो काफी हद तक कारगर भी रही। अब एकाएक जब चुनाव दो महीने बाद रह गया है तब पार्टी में ये घमासान मची है, जैसा आपने कहा शुरुआत में। दूसरी बात, बीजेपी स्टेट में अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए लगी हुई है। नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, लाखों लोग कथित तौर पर वो कहते हैं कि उनकी रैली सुनने आए और सबसे बड़ी रैली उन्होंने अपने जीवन की एड्रेस की। दूसरी तरफ राहुल गांधी का सब कुछ दांव यूपी पर लगा हुआ है और मायावती तो यूपी की एक बड़ी प्लेयर हमेशा से रही है। तो मुझे लगता है कि 2014 के बाद जो सबसे बड़ा इलेक्शन है भारत में वो अब होने वाला है उत्तर प्रदेश में, और अभी स्थिति एकदम साफ नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2019 में भारत में फिर से चुनाव होने हैं, तो 17 या 2019 के कुछ हिंट दे पाएगा, ये दिलचस्प रहेगा देखना।
आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये पुराने नेताओं को हटाने का दौर अखिलेश यादव के नेतृत्व में शुरू हुआ है, क्या वो कहीं ना कहीं जो भारत की जो बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा भी है 30 से 35 साल से कम की है, उसकी एस्पिरेशंस को दिखाता है?
मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जितार। ये हो रहा है और धीरे धीरे ज्यादातर प्रदेशों में हो रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में भी ये है। एक मोबाइल जनरेशन जो है जो वोटर्स की आई है और लाखों करोड़ों की तादाद में जुड़ रहे हैं लोग जो वोटर्स हैं नए, वो एक दूसरे स्टाइल की पॉलिटिक्स चाहते हैं। वो उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चाहते जिसमें दबंगई थी, जिसमें एक दौर का मतलब जो 1970 और 80 के दशक में मसल पॉलिटिक्स हुआ करती थी, वो उससे कतई इत्तेफाक नहीं रखते। अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा भी देखें तो आप देखें कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आजकल फडणवीस हैं, आप गुजरात में देखें मिस्टर बनाया मोदी के बाद, उसके बाद फिर से जिनको बनाया वो रिलेटिवली यंग है। तो ये जो दौर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है और मुझे लगता है कि ये अब इंडियन पॉलिटिक्स में धीरे धीरे डोमिनेंट होता जाएगा, ये अब वापस नहीं जाएगा।
नितिन श्रीवास्तव साहब, इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया SBS का।